देश में जाट कहते हैं उसको, समी के वृक्ष के वहां बंधा हुआ है, तो वहां मुर्दे रहते हैं, कौन जाए उन शमशान के बीच में, भय लगता है। तो अरस को शमशान में ले गए, नजदीक में ही था, और सारे अस्त्र शस्त्र उतारे, दिख रहा है ये भीम की गदा है, ये प्रधान समझो कि युधिष्ठिर की आपने तलवार है, ये मेरी गांडीव धनुष है, ये मेरे बाण है। तो सब हथियार लेकर के रथ में रखे और कहा कि एक काम कर, मैं तो बनूंगा योद्धा और तू रथ हाक, देख तुम्हारे को मैं दिखलाऊं। तो उसके मन में हिम्मत आ गई, इसके बाद जो है तो अब देखेंगे जो जो कुछ होगा। अब चले उनके सन्मुख, चले तो अर्जुन ने संग बजाया, पहले संग बजाने से ये तो एकदम मूर्छित हो, उत्तर कुमार तो मूर्छित हो, थोड़ी देर के बाद मूर्छा जागी। तो उत्तर ने कहा कि देखो जब आप संग बजाओ तो पहले से कह देना जो मैं अपने कानून में अंगुली दे। तो अर्जुन जब जब रस बजाता, जब जब संख बजाता था, और वो एक प्रकार से खोल दिया करता था, संख बजाता था, अंकों में आंगली दे लिया करता था, सुन की ध्वनि सुनने के साथ में भीष्म और द्रोण को समझिए कि ये देव का संख है, अर्जुन का संख। वह लोग चर्चा करने लगे कि रथ के मां तो एक दुगाई बैठी है, कि अर्जुन खोजे का भेद रखता था, और उत्तर कुमार जो है तो सारथी बढ़कर के रथ हाक रहा है। दूसरे ने कहा कि भीतर में जो बैठी थी वो राजा विराट की लड़की है, तो उत्तर कुमार एक प्रकार से अपनी बहन को साथ में लेकर हमारी भेंट देने के वास्ते आ गई, कि भाई एक प्रकार से आप हमारे पर नाराज मत हो और हमारी बहन को तुम ध्यान, ये मतलब है। से बोलो ये डोड़ा लेकर आते, बोलो डोड़ा कैसे है, तो डोड़ का बालो हो जाएगा आगे जाके, कैसा डोड़ा के कितने थे। अर्जुन के बाण आने लगे, तो अर्जुन भीष्म और द्रोण और जो अपने गुरुजन है उनके चरणों में बाण मारे, माने बाणों से नमस्कार करते, कितनी दूर से और क्या उपाय, बाणों के द्वारा नमस्कार किया। और इसके हुक्म लेना चाहते हैं समझो, तो अब पानी तो वहां तक सुनती नहीं, इस वास्ते ऐसे बाण माए कि जो सन्नाट करते हैं कानों के पास निकलते, कि महाराज आज्ञा दो हमारे को युद्ध के लिए। तो उसके बाद के दिन के वहां इन्होंने बाणों से उत्तर दिया, और दोनों का युद्ध होने लगा, दोनों का युद्ध होने लगा। तो एक तरफ से समझो कि आपने अग्नियास्त्र चलाते हैं आग बरसती आकर के, दूसरी तरफ से वारुणास्त्र चला देते हैं जिससे शांति हो जाती है, तीसरी तरफ से वायुवास्त्र चलाते हैं जिससे बाद ये जो आपने बादल उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से एक दूसरे का प्रतिकार करते हुए दिव्य बाण चलाने लगे। ये दिव्य बाण है जिससे अलौकिक चीज प्रकट हो जाती, आखिर के बीच के वहां अर्जुन ने मोहनास्त्र चला दिया, मोहनास्त्र के चलाने के साथ सब मूर्छित होकर के गिर गई, मनुष्य क्या पशु क्या, और सब जो कि रथीर अपना घुड़सवार पैदल सब के सब मूर्छित हो गए, एक भी बाकी नहीं रहा। उस समय के बीच में अर्जुन ने उस उत्तर को कहा कि उत्तर ये सब मरे हुए माने मरे हुए के तुल है, तो तुम अब किसी पगड़ी का चिल्ला उतारा तो उतार ले, तो जितने राजा लोग हैं सब मरे हुए के तुल है, बेधक्त रह ख्याल करना भीष्म द्रोण के पास नहीं, वे मेरा कायदा रह करके चुप हैं, उनको मूर्छित करने की मेरी सामर्थ्य तो उनसे तो दूर रहना चाहिए, और सब मरे हुए के तुल है। तो चिल्ला उतार करके वो ले आया, रथ में आकर के बैठ गया, ग्वालियों को हुक्म दे दिया कि गवें जो तो अपने वापिस ले चलो, और गवें छेर दी, और ये अपने गऊ को लेकर के लौट करके वापिस आ। एक मुहूर्त के बाद उनकी मूर्छा सुध जाती, बस दुर्योधन और सब मारो पकड़ो मारो पकड़ो, कौन है क्या बात। तो फिर भीष्म जी ने कहा कि कौन है, अर्जुन है। बोले चलो लड़ने के लिए। बोलो वो ही अर्जुन वो ही हम लोग, यदि अपमान कराना हो तो जाओ, है थारी सामर्थ किसी की अर्जुन के सामने लड़ने की, खाली बात बनाते हो। अरे अभी तुम लोग कहां गए थे, अर्जुन अभी तो अकेला ही अर्जुन था, अब तुम सबको मूर्छित कर करके अरे अपने गांव को अपने वापिस ले जा रहा है, और फिर कहते उस चढ़ करके लड़े, जा तेरे दो सिरे तो लड़। दुर्योधन ठंडा हो गया। दुर्योधन ने बोला कि महाराज जब पता लग गया कि पांडव है और अर्जुन है तो इसको फिर 12 वर्ष का वनवास दिया जाए। बोले हिसाब तो देखो, तो हिसाब लगाया तो चंद्रमा से थी तो 13 वर्ष होकर के 4 महीना अधिक हो, और तुम जो कि सूर्य मास के से गिणना करी तो भी 13 वर्ष हो। बोले भी अब तो 13 वर्ष तो हो गए, किंतु अर्जुन की संख्या के मां 3 दिन कम थी, कोई प्रकार से थी, पांडी का फर्क उस वक्त में भी था। तो भीष्म जी ने कह दिया कि 13 वर्ष हो गए सूर्य मास से भी और चंद्रमा से 4 महीना और कितने दिन अधिक हो गए, अब हमारा कोई उपाय नहीं रहा, इसको फिर 12 वर्ष वन में भेजें। तो ठीक है, अर्जुन जो घर में प्रवेश होते समय में पुत्र को कह दिया कि देखो हम लोग 3 दिन छिप कर रहे, 3 दिन के बाद तो प्रकट हो जाओ, 3 दिन तक हमारा परिचय नहीं देना। सब बता दिया उसको कि तुम्हारे पिता को जो चोपड़ खिलाता है वो तो राजा युधिष्ठिर है, तुम्हारी माँ की जो सेवा करती है वो सेंद्री के नाम से वो द्रौपदी है, अरे जो तुम्हारे रसोई बनाता है जिसका नाम बल्लभ है वो एक प्रकार से भीमसेन है, और घोड़ों के सर्वदारों के ऊपर नकुल है, और गायों के ग्वालियों के ऊपर वो सहज है। सब बता इस प्रकार से हम आदमी छिपकर तुम्हारे यहां नौकरी कर, बात हुई। इधर के बीच के वहां पढ़ाई आई, कहा उत्तर कुमार की विजय हो गई, उत्तर कुमार की विजय हो गई। विराट समझो कि खुला विष्ट माता, उसको मेरा पुत्र गैरों को जीत लिया अकेला, वाह वो पासा गिरते समय बोले जय उत्तर कुमार की जय उत्तर कुमार की। तो राजा जिसे जब पासा गिरते हैं तो कहते हैं कि जिनका सारथी ब्रह्म रहा है उसके जय में क्या हो, अर्जुन जिनका सारथी, ये एक बार कहा दो बार कहा 3 बार कहा तो राजा विराट उसको बर्दाश्त नहीं कर, पाशा उनके हाथ में था कि युधिष्ठिर के मुंह के ऊपर मारी तो नाक घा हो गया और खून गिरने लगा। वहीं द्रौपदी खड़ी थी, उसके हाथ में सोने का कटोरा था, स्वाभाविक ही राजाओं के काम के वास्ते चीज बस लेना ले जाने के लिए स्वाभाविक रहता ही है, तो झट वह दौड़ी और उसके खून को गोद में लेगी राजा युधिष्ठिर के खून। ये बात को राजा युधिष्ठिर जानते हैं और द्रौपदी जानते हैं और कोई नहीं जानता। राजा विराट ने कहा कि सुरेंद्र जी तू क्या कर रही है, इस ब्राह्मण के खून को तू बोस रही है, कोई राजा युधिष्ठिर थोड़ा ही है जो जमीन में गिरने से वहां 12 वर्ष काल पड़े। बोला महाराज मेरे लिए तो युधिष्ठिर जी, ये ब्राह्मण है जिसका मेरे लिए युधिष्ठिर जी है। विराट ने सोचा कि इसकी प्रसन्नता के लिए ये बात कह दी, ब्राह्मण की स्तुति के लिए, उसके ध्यान में ये नहीं आया कि युधिष्ठिर जी है, बस एक प्रकार से थी जो निकलेगी। युधिष्ठिर ने सोचा कि यदि अर्जुन यहां आ जाएगा और मेरे खून निकलता देखेगा तो विराट को और उत्तर कुमार को सबको मार डालेगा, क्यों कि उसके ये प्रतिज्ञा है कि राजा युधिष्ठिर का खून जो जमीन में गिरा देगा उसको बिना जान से मारे नहीं रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है एक प्रकार से। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा मिथ्या होगी नहीं। तो युधिष्ठिर ने एक सिपाही को कहा कि तुम उस वृंदा को कह दो कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए तुम परवारे समझो कि आप वनवास में चले जाओ, सभा में मत आओ, समझो कि मंत्री का हुक्म है। ठीक है, वो से जा कह दिया अर्जुन को, ये पता नहीं अर्जुन आप चलाएगा। उत्तर कुमार आया, उत्तर ने देखा कि राजा कृष्ण के नाक के फूल पड़ गए। पिता से पूछा कि इस ब्राह्मण के ऐसा खून पड़ा क्या कारण? बोलिए तुष्ट एक प्रकार से थी, ब्रह्मलाल की प्रशंसा करता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पासा गिरता था तो कहता उत्तर की, उत्तर कुमार की जय, उत्तर कुमार की जय। और जब मैं तुम्हारी जय बोलता तब यह कहता कि जिसका सारथी ब्रह्मलाल है तो उसके जय में क्या संशय है। अब उस खोजे की प्रशंसा मेरे पास नहीं सुनेगी। बोले महाराज आपने बड़ा भारी अपराध किया, ये जो विजय है वो ब्रह्मलाल के प्रदान है, किंतु तीन दिन तक इसका मैं भेद आपको नहीं बताऊंगा, तीन दिन के बाद इसका भेद मैं आपको बता दूंगा। मैं जो कैरुओं से विजय पाई है उसमें प्रधान कारण अशोक ब्रह्मलाल है, मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है, मेरी विजय नहीं है, ब्रह्मलाल की विजय है, तो इसके कारण ही हमारी विजय है। से क्षमा प्रार्थना का तो हाथ जोड़ के कि महाराज मेरा अपराध हो गया, मेरे से जो आपके पास की लगी तो उसको आप क्षमा करो, माफ करो, इस प्रकार से काम मेरे गलती से हो गए। तो महाराज तो क्षमा मान गई, जिसे कहते तो कोई क्रोध कभी था ही नहीं। कोई बात नहीं, बोले आप कोई बात का विचार न करें, जो बात हो गई कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों को क्षण करना चाहिए, कैसी अद्भुत लीला थी। एक दिन की बात है कि वहां चित्र नाम का एक दाना रहता था और द्रौपदी बड़ी सुंदर थी, तो इसको देख करके के और वो चित्र दाना अपनी जो बहन है उसको कहा कि तेरी जो दासी है इसको तुम मेरे महल में भेजा कर। तो कहा कि किरण जी तू मेरे भाई के महल में तुम जा, कोई ना कोई भानस है भेज देती। अरे वो एक दिन गई तो उसका हाथ पकड़ करके किसी बलात्कार करने लगा, तो हाथ छुटा करके और झट वो सभा के वहां आ गई। इस राजसभा के बीच के मां ये किसी विराज नहीं कर सकेगा। अरे पिछु पिछु पीछे आया और राजसभा के बीच के मां समझो कि जो द्रौपदी है उसको जमीन के वहां पटक करके उसके लात मारते हैं और कहा कि हे सुरेंद्री ये विराट जो है ये तो कथन मात्र का राजा है, वास्तव में राजा मैं हूं, मैं जो करूंगा सही होगा, ये तुम्हारा राजा कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। तू जो भागकर कहते राजसभा को आश्रय लियो है ना, तो ये वास्तव कुछ भी नहीं है, तू कहीं चली जा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो वो फिर दूसरे के पास मंगी, देखो महाराज मेरे कोई भी अपराध नहीं है, अरे ये दुष्ट मेरे पीछे पड़े हुए, अरे यो कहे कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर करके छोड़ूंगा। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां महाराज समझो कि आप लोगों को जो कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। मैं एक परिव्रता स्त्री और बिना अपराध के इस प्रकार से तंग करी जा रही हूं, अरे ये दुष्ट मुझ को इस प्रकार से तंग करता है और आप लोग इस बात को देखते हुए इस दुष्ट को किसी दंड नहीं देते। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे सुरेंद्र जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो खुद अपने पतिव्रत धर्म के बल से अपने धर्म की आप ही रक्षा कर लेती है, उसको दूसरे की सहायता लेने से क्या आवश्यकता है। दूसरे पतिव्रत धर्म के बल से अपनी तू रक्षा कर ले। द्रौपदी ने सोचा कि मेरा जो पतिव्रत जो धर्म है वो इस प्रकार से कुछ दाना ने मारने के लिए थोड़ा ही, वो एक प्रकार से थी। दूसरे दिन भीमसेन के पास में गई और भीमसेन सोचा हुआ था, उनके आंसू पड़े मारे दुख के और भीमसेन की छाती के ऊपर भीमसेन की आंखें खुली, द्रौपदी को रोते हुए देखकर बोला कि सुंदरी क्यों रोती है। तो वो रोकर कही कि आप जैसे वीरों की पत्नी मां होकर के आज मैं सिंह की सिंहनी होकर के और तिहारियों के द्वारा एक प्रकार से अपने खींची जा रही हूं, आप लोगों के जीते हुए, आप लोगों के रहते हुए, और मेरी याद अच्छा है वो चीतक जो दानव है, जिसको आज कई दिन से मेरे ऊपर बलात्कार करने के वास्ते सुलियो है, और आपने सुना ही होगा कि सभा के बीच में दुष्ट ने मेरे लात मारी और ये मेरे ऊपर रवाब जमाया कि यहाँ कोई भी मेरे ऊपर नहीं है, मैं जो करूंगा सही होगा। महाराज अब कुछ समय अपनी ज्ञान कैसे बचाऊ, मैं समझो अपने प्राणों का त्याग कर सकती हूँ कि उनको अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। भीष्म ने उसके आंसू पोंछे और कहा प्रिय तुम चिंता मत करना, वो दुष्ट मेरे द्वारा मारा जाएगा, वो तुम्हारे को बुलाता है। हाँ बुलाता है, तो आज रात को तुम टेम दे दो कि मैं रात के बीच के मां जो सायंकाल में मैं तुम्हारे पास में आऊंगी, नाच घर के मां नाच घर अपने स्थान और सायंकाल का समय ठीक है। और भीमसेन सायंकाल के पहले ही उस नाच घर के मां जाकर के बैठ गया, मानो संध्या गायत्री करता हुआ जब ध्यान करता है। और सायंकाल के वक्त भीमसेन तो वहां बैठे ही है, और बस चित्तक दाना जो है तो वो अपने उसको प्रतीक्षा कर रहा है जैसे कोई मौत की प्रतीक्षा करे, और वो एक प्रकार से मदरा की बोतल लेकर पहुंच रानी है कहे कि मेरे एक प्रकार से भाई को ये मदरा की बोतल तो पहुंचा क्या करे बेचारी दासी होकर के। और वो मदरा की बोतल लेकर के आई और बोतल तो ले ली और झट उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगा कि तू मेरे साथ में इकरार किया था, वो पहला ही जाकर के किचन से ये संदेशा भेज दिया कि आज रात्रि के समय एक नाच करके मैं आपसे मिलूंगी, तो बस वो मिलने आई है, सायंकाल का वक्त हो ही गया। तो वो उससे झपटा झपटी करने लगी कि तो पास के मैं भीमसेन बैठे। भीमसेन ने कहा अरे भैया दूसरे की स्त्री के ऊपर ऐसा बलात्कार नहीं करना चाहिए, समझा। बोले तू उपदेश देनी कौन, बोले ये न्याय की बात है, उचित बात है, ये दूसरे क्षेत्रीय जब तुम बलात्कार करते हो तो ये तुम्हारा करना उचित नहीं है। तो वो तो एक राजा बना बैठा है, बोले कौन बोलने वाला तुम देखे, ये तो रसोया हमारा यहाँ। अरे बोला एक प्रकार से निकले यहां से, तो बोले मैं ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। बोले नहीं देख सकता तो कल आ तू आ, तो दोनों की अपने झटल हो गई। और कभी वो उसको मारता है, कभी उसको पटकता है, कभी उसको पटकता है, आखिर के बीच के मां समझो कि वहां के आसपास के जो वृक्ष थे वो वृक्षों से लड़े, जो कोई पत्थर थे उन्हों से लड़े, सब समाप्त हो गए, मलजूल करने लगे। आखिर के बीच के मां समझो कि तीन सैन ने उसे उनको मार डाला और उसकी जो नार है वो उसके घर के मां अपने प्रवेश करा दी और पैर सिकुड़ करके कर दिया, गिंडी की माफत गोल बना करके एक सभा मंडप का खंबा जो था उसको खाड़ करके ऊंचा करके उसके नीचे से द्रौपदी को कह दिया तुम चल और आप अपने ठिकाने जाकर सो गया। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल हुआ तो एक प्रकार से सब लोग आए बोले कि इससे को कोई मार गया, इससे को कौन मार गया। तो दासी से पूछो, रानी ने कहा कि मैं बोतल देकर के शैलेंद्र जी को वहां पे गया था, उसको मालूम होगा कौन मार गया। तो उससे पूछा इसको कौन मार गया, बोले मेरे पांच पति गंधर्वों के समान मेरे पर कोई बुरी दृष्टि करता उसको मार जाते, तो यो मेरे पर बुरी दृष्टि करी इसीलिए पांच गंधर्वों में एक मेरा पति जो राज है इसको मार गया। अब उसके 105 चेले थे, सब इकट्ठे हुए, मरने वाले के पानी वाला पाई कठा हुआ, तब इकट्ठे हुए बोले देखो किसी को मरता मरता शैलेंद्र के वहां मन लगता था, मरा तो मरने के वक्त भी शैलेंद्र में मन था, तो यह उसकी मन से असली हो गई, तो किसी के साथ साथ इसकी भी दाह क्रिया कर, क्योंकि पति हो गया तो पति का सती होनी चाहिए, अरे मूर्ख को सती अपनी ज्यादा होती है, उसको जरा है जाता है, अपने मन से तो कल्पना कर लिया उसके स्त्री और मन से ये कल्पना करने इसको साथ में तो भस्म कर दी। अब स्वयं जी घबराई द्रौपदी, द्रौपदी भीमसेन के पास में गई, महाराज ये चर्चा हो रही है, पर कोई चिंता नहीं कहने ले जा तो चली जा ना पचारी, मतलब उसको अर्थी के बांध करके ले गए
वहां बड़ा भारी सीता का एक आपने समझो स्थल बनाया, उसके ऊपर आपने द्रौपदी को बढ़ाया और उसके गोद के वहां सीता को बढ़ाया और सब ठीक कर दिया कि अब उसके आग लगानी बाकी थी। भीमसेन अपने घर से निकला और निकल करके एक बड़ा भारी तालाब था, उस तालाब के ऊपर अपने वस्त्र निकाले और उसकी जो कीचड़ है वो सारे शरीर के मल भूतका का रूप धारण कर लिया और वहां एक अपने वृक्ष था, काल वृक्ष बड़ा भारी लंबा चौड़ा, उसको उखाड़ा और उसको उखाड़ करके कांधे ऊपर धरा और कांधे ऊपर धर करके उसे पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ और पहाड़ के नीचे ही तुम जो शमशान भूमि थी और टकाल दी कि खड़े रहो द्रौपदी बोली के मेरे पांच पतियां में एक ही होगा, आप उसको देख करके सबके छक्के छूट गए और वो मार उठा उठा कर दे रहे तो एक को मारा गिरा दूसरे को मारा गिरा, बोले गिनकर 105 है तो समझो कि ये कोई बाकी नहीं रह गया, तो 105 जो थे सबको एकदम मार करके चुकी और सीता के साथ में 106 लाश चल ली, 112 कितने सार 105 उसके चले थे, 106 लाश चल करके उसके आग लगा दी और प्रेम ये था कि तुम जा कोई कहे कि गुण गुण मार गया तो कह देना कि मेरा पति मार। अब हल्ला पूछा 105 जो अपने कितने थे कितने के जो चेले थे उनका पति जन्म लगाकर सबको मार गया, अरिया अब वापिस शहर को आ रही है तो सब दुकानदार लोग अपने मिट्टी नार कर ली और उसकी तरफ देख रही वो देखा मैडम उसे एक जो थे दाने मारे। अब वो घर के ऊपर आई तो घर के ऊपर आई तो राजा विराट ने कहा कि प्रेमरी क्या है, बोले महाराज हाल क्या है, जो मेरे पर बुरी दृष्टि करता है ना उसको मेरे पति आके मार जाती, मेरे पांच पति है जमीन के समान, वो एक प्रकार से एक पति को मालूम हुआ तो वो आकर करके अरे सबको मार डाला और आग लगा करके सबको खत्म। तो प्रेमरी अब तुम यहां से चली जा क्योंकि शायद हमारी दृष्टि तुम्हारे पर कभी खराब हो जाए तो हम तुम्हारे जाएंगे बेमो, तो बहुत दिन तुम यहां रही और अब तुम असल चली जा कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी कर ले। बोले देखो महाराज अब थोड़ा दिन जो है बाकी है, थोड़ा दिन आपको रखना पड़ेगा और आप यदि नहीं रखोगे तो मेरे पति आप पर नाराज हो जाएंगे। इधर मरा इधर मर दोनों का नहीं मौत है तो वो जाके ठीक तू रहे महाराज कोई मेरे पर बुरी निगाह नहीं करता उसके मेरे पति नहीं मारते, देखो आप देखते आज तक किसी ने मारा गया पर जो मेरे पर बुरी दृष्टि करता है उसको तो मार डालते मेरे पर। तो बेचारा देखा भाई ठीक है तो बुरी दृष्टि वैसे ही पड़ी हो। इस प्रकार से वो वहां तो कितने दिन तक पोड़ रही सबको एक साल भर तक गया। साल बीतने के बाद राकाकाली राजा ठीक है देखो तो आपने राजा होकर के गद्दी पर बैठ गए और चारों भाई जो है वो कोई सफर करने लगे कोई चौड़ करने लगे और एक प्रकार से और सिंहासन के ऊपर द्रौपदी और राजा जी से बैठ गए। जो सिंहासन राजा विराट का था उसकी जैसे पंच रत्न की धरती आती है ऐसे बैठ। अब राजा विराट उत्तर कुमार ये तुम्हारे बोले क्या बात है ये अपनी यहाँ नौकरी कर लीजिए ऐसे तो उत्तर ने सारी बात कह दी कि हमारा जी विद्र है या द्रौपदी है विदुष है नर्जुन नकुल सहदेव एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर है हम लोग उनके मातृत हैं इसलिए उनका अधिकार है बैठने का और इनकी कृपा से हमारी विजय हुई है ये छिप करके रहते थे हमारे यहाँ एक प्रकार से। तो बोले अभी एक काम करो राजा विराट ने कहा कि देखो इस प्रकार से आप हमारे नौकरी करिए और छोटा काम हम आप लोगों से कराए हुक्म दे दे करके तो आप लोगों के गुस्से में ये है जा ये छोटा काम इन्होंने हमारे से कराया तो हमारे पर गुस्सा रहेगा तो कहीं हमारे तो आप मार डाले, इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी जो लड़की है उसका उसके उसको मैं अर्जुन के साथ में जा सकूँ। अर्जुन बोला कि मैं तो उसको विद्या पढ़ाई है मेरे तो मैं तो गुरु गुरु करके उसको विद्या पढ़ाई है तो मेरे तो वो लड़की के समान है मैं उसके साथ में जा सकते करूँ, कोई नहीं आपको यह काम करना ही होगा आखिर मैं अर्जुन इस बात को स्वीकार नहीं बोले एक काम करो आपके मन में भाई है तो मेरा लड़का जो मन है उसके साथ में जा तो तुम तो मेरी पुत्र वधू होगी तो मेरे लड़की के समान ही रही तो ये नाता करके फिर अभिमन्यु के साथ मैंने उत्तर का उत्तर कुमार का विवाह कर दिया। इस प्रकार का ये प्रसंग विराट नगर की माँ महाभारत में आता तो ये इसलिए आपको बताया कि राजा जिसे कितने धर्मात्मा थे उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए कि जिस देश के महाराजा जिसे बात करते हैं उस देश की प्रजा धर्मात्मा होती है देश में राजा जिसे वास करते हैं और महामारी नहीं आ सकती, राजा जिसे वास करने से वहाँ धर्म और समझो की शक्ति वृद्धि होती है, और छूने एक तो बात गिर जाए तो वहाँ 12 वर्ष साल पड़े, और बात करे तो समझो की उस लड़ के बीच में जमाना हो यानी धन धान की वृद्धि हो तो वहाँ धन की धान की गोधन की सब वृद्धि होगी। ऐसे महाराज जिसे जो है तो समझो की बहुत ही उत्पत्ति से परमात्मा को थे। महाभारत के वन पर्व के वहां लिखा है कि जिस समय के बीच के महाराजा एक वन में गए तो एक दिन भीमसेन के आने में विलंब हो गया, तो भीमसेन को खोजते खोजते भीमसेन के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा भारी अजगर तो जो पहाड़ के समान भीमसेन को पकड़ सका। राजा ने पूछा भीम को, भीम ये क्या बात है? तो महाराज क्या ये अजगर कौन है मालूम नहीं, मैं इसके बसीभूत हूं। अरे तेरे में तो सब चार हाथियों का बल है, बोले सब मात होगा। तो अजगर से कहा कि अजगर वे आप कौन हो, आपका परिचय दो और मेरे भाई भीमसेन को छोड़ो। बोले नहीं मेरे अधिकार में आ गया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत इनका भूखा हूं उसको मैं खाऊंगा। बोले कोई शर्त है कि जिसको आप छोड़ सकते हो? बोले एक शर्त है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देता रहे तो मैं छोड़ू। तो बोले आप प्रश्न करो। तो वो से प्रश्न थे कि बोले जाति से ब्राह्मण है कि एक प्रकार का कर्म से ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा कि पूछा अजगर ने कि जाति का तो ब्राह्मण है और आसन उसके शुद्ध कहते हैं, और जाति का तो शुद्ध है और आसन जैसे ब्राह्मण से कहते हैं, तो ब्राह्मण में कौन है? बोले जिनके आचरण ब्राह्मण से नहीं है और जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, और जाति से एक प्रकार से शुद्ध है आचरण उसके ब्राह्मण के हैं तो शुद्ध शुद्ध नहीं। तो और भी बहुत सी बात थी कि हिंसा धर्म बड़ा है या सत बड़ा है, और चुटिया के मां जिसमें प्राण जाते हो वहां से भी जीव बोल दिया जाए तो कोई इतनी रोष की बात नहीं, दूसरों का प्राण बचाने के लिए। तो जितनी बातें पूछी सबका उत्तर दिया। फिर राजा जिसने भी उनसे पूछा वो भी जवाब दिया। आज उन्हें भाई के विषय में जवाब सवाल होकर थे और वो सब संतुष्ट हो गए। बोला राजन मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हो गया, मैं तेरे भाई को मैं छोड़ देता हूँ। भाई भीमसेन को छोड़ दिया, भीमसेन को छोड़ करके अजगर ने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। प्राणों से त्याग करने से उसके अजगर के शरीर में कोई ज्योति नहीं, और वो ज्योति आकाश में जाकर के छोड़ एक देवता के रूप में वो ज्योति उसे आकाश में दर्शन दे दी। ऋषि ने हाथ जोड़ करके पूछा कि ये आप कौन हो? आप कोई देवता हो या आप कोई विद्याधर हो या कोई सिद्ध पुरुष हो या कोई यक्ष हो या राक्षस हो या किन्नर हो, कौन हो? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों के बीच में ययाति का पिता जो नहुष राजा हुआ था वो मुझे, मैं एक प्रकार से अपने स्वर्ग को चला गया था और स्वर्ग के बीच में वहां इंद्र जो है इंद्र इनके ऊपर आपत्ति आ गई थी, इंद्र के हाथ से ब्रह्मत्या हो गई थी, इसलिए इंद्र कमल वन में जाकर के झुक गया था। तो इंद्र की गद्दी खाली देखकर ऋषियों ने और देवताओं ने इकट्ठा होकर के ये विचार किया कि किसको एक प्रकार से अपने इंद्र बनाया जा। तो सब लोग मिलकर के मुझको इंद्र बनाया, क्योंकि मैं राजनीति में कुशल था और तपस्वी था धर्मात्मा पुरुष था, तो मुझको उन्होंने सब इंद्र बना दिया। इंद्र के कुर्सी पर बैठने से इंद्र के पद पर बैठने के साथ ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उस राजपद को पागल, राजपद को पागल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैं एक प्रकार से इंद्राणी को हुक्म किया कि मैं इंद्र हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा पति हो गया, तुम्हारे महल में आऊंगा। तो इंद्राणी ने कहा कि मैं तो एक कोई गद्दी के से नहीं, कोई मैं कोई जैसा नहीं, मैं कोई अप्सरा नहीं, मैं तो पति प्रताप से नहीं हूँ, शक्ति मेरा नाम है और मैं मेरे पति के लिए मैं दूसरे के साथ में सेवा नहीं कर सकती। तो बोला कि तुम नहीं कर सकती है तो मैं तुम्हारे पर व्यापचार करूंगा। तो वो बेचारे छोड़ करके देखूंगा जो गुरु भक्त के पास में गई और भक्ति से पूछा कि मैं क्या करूँ? तो भक्ति ने यह राग है कि तू कह गए कि तीन लोगों पर आपका राग है तो सब तरीकों को पाल के मेरे कर मेरे घर में आए, बस मेरा काम आती जाए ठीक है। तो सर कहा जाते कि आप मेरे महल में आना चाहते हो तो सब तरीकों को पाल के मैं जोड़ करके आप मेरे महल में आओ। ये सुन करके मेरे कहता है मैं बड़ा खुश रहा कि अपना तो काम बन गया। अर्जुन को बुलाया और बोला कि मेरी पार्टी को तुम इंद्राणी के महल पर ले चले, और इसीलिए सोचे कि उसको इंद्र बना दिया, घर तक स्थल पर है इसकी आज्ञा हमको माननी पड़ेगी क्योंकि हमारा बना हुआ राजा है। तो एक प्रकार से तुम करने लगे आस्था से करने लगे, सफा शिविर करो शिविर करो, जब तुम्हें पार की धोई सुनी कहिया तो खुद से सच की मारी अगस्त के सचिव सब। तो सिद्ध सड़क ऐसा कहा तो ऐसा करने के साथ ही वो सब हो गया। और तब नहीं कहता है कि मैं प्रार्थना करूँ कि आप साक्षात महापुरुष हो मेरे, मेरे शत्रु को माफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा वचन मीठा नहीं होगा, तुम्हारे सिर के नीचे माँ महाराज विचित्र हुए तो उनके दर्शन के प्रभाव से, वार्तालाप के प्रभाव से तुम पाप से मुक्त होकर के उत्तम दृष्टि को चले जाओगे। ये राजन के देश में बड़ा भारी पाती था। एक तो प्रश्न के ऊपर मैंने बलात्कार करने का विचार किया, फिर गांव को पाल के झगड़ा, पर फिर अदब के लात मारी, ये तीन मेरे बड़े खराब हो गए, उसके कारण से मुझको सब नहीं सकेंगे। इस प्रकार से ये आपका प्रभाव है, आपके घटन से आपके साथ वार्तालाप करने से उन सब पापों से आदमी मुक्त हो गया और अब मुक्त होंगे तीन हजार, और वही आपकी कृपा है। तो फल करना चाहिए कि राजा जी के कितने धर्मात्मा थे, नहुष इतना भारी पापी, वो राजा जी के दर्शन के प्रभाव से, वार्तालाप के प्रभाव से पापी भी पवित्र होकर ऊपर